भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा दशम स्कंद प्रथम अध्याय चतुर्थ श्लोक निवृत्ततार्षाय रूपगीयमानात् उत्तम श्लोक गुणानुवादात् भूमान् विरज्येत विना पशुभिः निवृत्ततार्षाय उपगीयमानात् अवौषधक्षुद्रमनोभिरमात् उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुभिः निवृत्ततार्षाय उपगीयमानात् अवौषधक्षुद्रमनोभिरमात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुभिः
अनुवाद भगवान की महिमा का वर्णन परंपरा पद्धति से किया जाता है अर्थात यह आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंचाया जाता है। ऐसे वर्णन का आनंद उन लोगों को मिलता है जो इस जगत के मिथ्या क्षणिक वर्णन में रुचि नहीं रखते। भगवान का गुणगान जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे बद्ध जीवों के लिए उपयुक्त औषधि है। अतएव कसाई पशुघाती या अपने को ही मारने वाले आत्मघाती के अतिरिक्त भगवान की महिमा को सुनना कौन नहीं चाहेगा। तात्पर्य भारत में सामान्य लोगों के बीच यह आम प्रथा है कि बारंबार जन्म मरण के रोग से छुटकारा पाने के लिए वे भगवद गीता या श्रीमद् भागवत से कृष्ण के विषय में सुनते हैं। यद्यपि अब भारत पतित हो चुका है किंतु यह समाचार मिलते ही कि अमुक व्यक्ति भगवद गीता या श्रीमद् भागवत पर बोलेगा अब भी हजारों लोग सुनने के लिए एकत्र हो जाते हैं। किंतु यह श्लोक इंगित करता है कि भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत का ऐसे पाठ ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए जो भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो चुके हों। निवृत्त तर्शय है इस जगत में ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सारे जीव इंद्रिय भोग की भौतिक इच्छा से पूर्ण है और हर प्राणी इंद्रिय तृप्ति लगा हुआ है। किंतु इस तरह लगे रहने पर कृष्ण कथा के महत्व को चाहे वह भगवद गीता के रूप में हो चाहे श्रीमद् भागवत के रूप में हो पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। यदि हम मुक्त पुरुषों के मुख से भगवान की महिमा के विषय में सुने तो इससे भवबंधन से अवश्य छूट सकते हैं। किंतु श्रीमद् भागवत के पेशेवर वाचकों से सुनने पर वास्तव में मुक्ति प्राप्ति में कोई सहायता नहीं मिल सकती। कृष्ण कथा अतीव सरल है। भगवद गीता में कहा गया है कि कृष्ण परमेश्वर है, वे स्वयं बतलाते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, हे अर्जुन मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। केवल इतना ही जान लेने से कि कृष्ण परमेश्वर हैं मुक्त हुआ जा सकता है, किंतु इस कलयुग में लोग असली लाभ से वंचित रहते हैं, क्योंकि वे ऐसे धूर्त व्यक्तियों से भगवद गीता सुनना पसंद करते हैं जो भगवद गीता को यथारूप में प्रस्तुत न करके उससे अपनी इच्छा अनुसार तोड़ते मरोड़ते हैं। बड़े बड़े विद्वान, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा वैज्ञानिक अपने ही दूषित तरीके से भगवद गीता पर प्रवचन करते हैं और सामान्य लोग इन्हीं से सुनते हैं, क्योंकि वे किसी भक्त से भगवान के गुणानुवाद को सुनने में रुचि नहीं रखते। भक्त वह है जो भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत का पाठ करते हुए कोई अन्य प्रयोजन नहीं रखता। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको सलाह दी है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ही भगवान का गुणानुवाद सुना जाए। भागवत परोदिया भागवत स्थाने। जब तक कोई कृष्ण भावनामृत विज्ञान में सिद्धात्मा न हो, तब तक नवदीक्षित को चाहिए कि वह उससे भगवान के विषय में सुनाने के लिए न कहे, क्योंकि शील सनातन गोस्वामी ने पद्म पुराण से निम्नलिखित उद्धरण देते हुए ऐसा करने से मना किया है। अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टम यतापयः। जो वैष्णव आचरण वाला न हो उससे कथा नहीं सुननी चाहिए। वैष्णव को निवृत्त तृष्ण होता है, उसका कोई भौतिक उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना होता है। तथाकथित विद्वान, दार्शनिक तथा राजनीतिज्ञ स्वार्थवश भगवद गीता के अर्थ को तोड़ मड़ोड़ कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इसलिए यह श्लोक सावधान करता है कि कृष्ण कथा का वाचन वही करे जो निवृत्त तृष्ण हो। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के आदर्श उपयुक्त वाचक थे और मृत्यु का सामना करने के पूर्व अपना राज्य तथा परिवार को किसी उद्देश्य से छोड़ने वाले परीक्षित महाराज आदर्श श्रोता हैं। श्रीमद् भागवत का सुयोग्य वाचक बद्ध जीवों को सही औषधि भवौषधि प्रदान करता है। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐसे योग्य प्रचारकों को प्रशिक्षित करने में प्रयत्नशील है जो सारे जगत में श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता का वाचन कर सकें, जिससे विश्वभर के सामान्य जन इस आंदोलन का लाभ उठा सकें और भौतिक संसार के तीनों तापों से छूट सकें। भगवद गीता के आदेश तथा श्रीमद् भागवत के वर्णन इतने मनोहारी हैं कि भौतिक संसार के तीनों तापों से तप्त प्रायः प्रत्येक व्यक्ति इन ग्रंथों में से भगवान की महिमा को सुनना चाहेगा और मुक्ति के मार्ग में लाभ उठाना चाहेगा। किंतु दो प्रकार के लोग कभी भी भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत के संदेश को सुनने में रुचि नहीं लेंगे। एक वे जो आत्महत्या करने पर तुले हैं और दूसरे वे जो अपने स्वाद के लिए गौवों तथा अन्य पशुओं का वध करने पर तुले हुए हैं। यद्यपि ऐसे लोग भागवत सप्ताह के समय श्रीमद् भागवत सुनने का दिखावा करते हैं, किंतु यह कर्णीजनों की दूसरी सृष्टि है जिन्हें ऐसे कृत्य से कोई लाभ नहीं मिल सकता। इस संबंध में पशुघ्नाद शब्द महत्वपूर्ण है। पशुघ्ना का अर्थ है कसाई। उच्चतर लोकों में जाने के लिए कर्मकांडी व्यक्तियों को यज्ञ करते समय पशुओं का वध करना होता है। इसलिए भगवान बुद्ध देव ने वेदों के प्रमाण का तिरस्कार किया, क्योंकि वे पशु बलि को रोकना चाहते थे जिनकी वैदिक अनुष्ठानों में संस्तुति की गई है। निंदसी यज्ञ विधेयरह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। यद्यपि वैदिक उत्सवों में पशु बलि को मान्यता प्राप्त है, किंतु ऐसे उत्सवों के लिए जो व्यक्ति पशुओं का वध करते हैं वे कसाई पशुघ्न माने जाते हैं। भला कसाइयों को कृष्ण भावनामृत में कैसे रुचि हो सकती है जब उन्हें भौतिक आकर्षण मिलता रहता है। उनकी एकमात्र रुचि नश्वर शरीर के लिए सुविधाएं उत्पन्न करने में होती है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हैं और जो ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त रहते हैं, उनके मन में भगवान की भक्ति के लिए दृढ़ संकल्प नहीं बन पाता। भगवद्गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 44। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई। जो कृष्ण भावना भावित नहीं है और इस तरह जो भगवान की सेवा में अपने को नहीं लगाता है वह भी पशुघ्न है, क्योंकि वह जानबूझकर विष पीता है। ऐसे व्यक्ति को कृष्ण कथा में रुचि नहीं होती, क्योंकि उसमें इंद्रिय तृप्ति की लालसा शेष रहती है, वह निवृत्त नहीं होता। जैसा कि कहा गया है, प्रयवर्गिकास्ते पुरुषा विमुरवा हरिमेधसः, जिन्हें त्रिवर्ग अर्थात धर्म अर्थ तथा काम में रुचि रहती है, वे भौतिक पद प्राप्त करने तथा उसके द्वारा इंद्रिय तृप्ति के लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं प्राप्त करने के निमित्त धारक होते हैं। ऐसे लोग अपने को जानबूझकर जन्म मरण के चक्र में डालकर अपनी हत्या करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में कभी भी रुचि नहीं ले सकते। कृष्ण कथा के लिए वक्ता तथा श्रोता होना चाहिए, और ये दोनों कृष्ण भावनामृत में तभी रुचि ले सकेंगे जब उन्हें भौतिक कथाओं में रुचि न हो। वास्तव में हर कोई यह देख सकता है कि जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं उनमें यह प्रवृत्ति स्वतः उत्पन्न होती है। यद्यपि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तगण तरुण व्यक्ति हैं, किंतु वे भौतिकवादी अखबार पत्रिकाएं इत्यादि नहीं पढ़ते, क्योंकि उन्हें ऐसी कथाओं में कोई रुचि नहीं होती, निवृत्त तर्शय। वे देहात्म बुद्धि का सर्वथा परित्याग कर देते हैं। गुरु उत्तम श्लोक अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषयक कथाओं को कहता है और शिष्य ध्यान से उन्हें सुनता है। जब तक दोनों भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हो लेते, तब तक उन्हें कृष्ण भावनामृत की कथाओं में रुचि नहीं हो सकती। गुरु तथा शिष्य को कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि कृष्ण को समझने तथा कृष्ण के विषय में बातें करने मात्र से ही व्यक्ति पूर्णतया विद्वान बन सकता है। यस्मिन विज्ञाते सर्वमेव विज्ञातम भवति। भगवान हर एक के हृदय में आसीन रहते हैं और उनकी कृपा से भक्त तो भगवान से सीधे आदेश प्राप्त करते हैं। जैसा भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने कहा है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं हरेक के हृदय में आसीन हूँ और मुझी से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होते हैं। सारे वेदों के द्वारा मैं ही वेद्य हूँ, मैं ही वेदांत का रचयिता और वेदों का ज्ञाता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतना उच्च है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति गुरु के निर्देशन से श्रीमद् भागवत भगवद गीता तथा अन्य वैदिक साहित्य में प्राप्य कृष्ण कथा को पढ़कर तुष्ट रहता है। तब कृष्ण के विषय में केवल बातें करना इतना सुहावना लगता है, तो फिर कृष्ण की सेवा करना कितना सुहावना होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। जब मुक्त गुरु तथा उसके शिष्य के मध्य कृष्ण कथा पर वार्ताएं होती हैं, तो अन्य लोग भी कभी कभी इन कथाओं को सुनकर लाभ उठाते हैं। ये कथाएं जन्म तथा मृत्यु के चक्र को रोकने में रामबाण औषधि का कार्य करती हैं। बारंबार जन्म तथा मृत्यु का चक्र, जिससे मनुष्य को पुनः पुनः विभिन्न शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं, भव या भवरोग कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति इच्छा या अनिच्छा से कृष्ण कथा सुनता है तो उसका भवरोग अर्थात जन्म मृत्यु का रोग निश्चय ही चला जाता है। इसलिए कृष्ण कथा को भव औषधि, जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने की औषधि कहा गया है। कर्मीजन जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हैं, सामान्यतया अपनी भौतिक इच्छाओं का परित्याग नहीं कर सकते, किंतु कृष्ण कथा ऐसी रामबाण औषधि है कि कृष्ण कथा सुनने के लिए प्रेरित होने पर वह इस रोग से निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। इसके ज्वलंत उदाहरण ध्रुव महाराज हैं, जो अपनी तपस्या के बाद अत्यंत तुष्ट थे। जब भगवान ने उन्हें वर देना चाहा, तो ध्रुव ने वर लेने से मना कर दिया। स्वामिन कृतार्थोऽस्मि वरं न याचे, हे प्रभु मैं पूरी तरह से तुष्ट हो गया, मुझे इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई वर नहीं चाहिए। हम देख रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में युवकों तथा युवतियों तक ने अपनी बुरी से बुरी आदतें जैसे अवैध यौन, मांसाहार, नशा तथा जुआ खेलना छोड़ दी है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत इतना प्रबल है कि इससे उन्हें पूर्ण संतोष मिलता है, अतएव वे भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रुचि नहीं लेते।
निवृत्ततार्षाय रूपगीयमानात् भवौषधाच्छोत्रमणोभिरामात् क उत्तमश्लोकगुणानुवादात् पुमान विरजेत बिना पशुघ्नात। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन। अजोपि सन व्यय आत्मा भूतानमीश्वरोपि सन प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्मा मायाया। स्वयं के बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं अज हूँ, अर्थात मुझे कभी भी जन्म नहीं लेता हूँ। अजोपि अजो पी अपी अपी इस शब्द का अर्थ है तो फिर भी, मैं अज हूँ कभी भी जन्म लेते, परंतु मैं अपनी माया से, अपनी कृपा से, अपनी इच्छा से साधारण लोग के बीच में प्रकट होता हूँ। जो पिछले अव्यय आत्मा कृष्ण का दिव्य शरीर का जन्म नहीं होते, मृत्यु नहीं होते, वे सबके ईश्वर है और सबके बीच में आते हैं अपनी माया शक्ति से। माया शक्ति इस प्रसंग में, माया शक्ति शब्द का अर्थ है श्री कृष्ण भगवान की अंतरंग शक्ति। तो ये और ये सब कथा सुनने चाहिए, कौन हमको बतलाएंगे? सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव, श्रील प्रभुपाद, ऐसे निवृत्त तृष्णा महापुरुषों से हम इसी प्रकार कृष्ण कथा सुनेंगे। तो पहली बात है कि हमें कृष्ण कथा सुनने चाहिए। ये श्लोक में कि कृष्ण कथा सुनने चाहिए, ये वचन स्थापित है, नहीं कृष्ण कथा सुनने चाहिए। बवौषध वो औषध है भाव के लिए। भाव क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम, उसलिए क्या चिकित्सा है? मलेरिया, टाइफॉइड, ये सब रोग है और अलग अलग प्रकार के रोग के अलग अलग इलाज होते हैं। तो मृत्यु के लिए क्या इलाज है? है दवा है मृत्यु के लिए, वो है कृष्ण कथा श्रवण करना। किस प्रकार इलाज है? ओ जैसे कैंसर में वो कीमोथेरेपी होते, नहीं मनोविराम होते, हाँ अच्छा लगता है कोई जो कीमोथेरेपी लेते हैं, नहीं बहुत खराब लगते हैं और उससे बहुत दर्द होते हैं, असुविधा होते हैं, बहुत खर्च होते हैं और सब बाल निकाल जाते हैं। परंतु यही चिकित्सा कृष्ण कथा सुनना, वो मनोविराम सुनने से मन आनंदित होते। परंतु एक चेतावनी भी है कि अच्छी तरह कृष्ण कथा सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक शर्त है, निवृत्त तृष्णा होने चाहिए। निवृत्त तृष्णा अर्थात किसी प्रकार भौतिक कामना यदि किसी के हृदय में विराजमान होते हैं तो वो व्यक्ति प्रवृत्त तृष्ण है, निवृत्त तृष्ण नहीं है, वो व्यक्ति योग्य नहीं है कृष्ण कथा परिवेशन करने के लिए और कृष्ण कथा सुनने के लिए। कृष्ण के बारे में कथा परिवेशन और श्रवण करना भारत कि धार्मिक संस्कृति का एक मुख्य प्रथा है नहीं, और कृष्ण के बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, केवल हिंदू नहीं, जैन भी कृष्ण के बारे में कहते हैं, परंतु क्या कहते हैं? जो जो जैन जो कृष्ण भगवान के बारे में कहते हैं तो ये वैष्णव शास्त्र में नहीं कहना चाहिए, इतना बड़ा अपराध कहते हैं कृष्ण के बारे में। और दुर्योधन भी कृष्ण के बारे में बोलते थे, दुर्योधन से हमें कृष्ण के बारे में नहीं सुनना चाहिए, दुर्योधन से शिशुपाल से जो कृष्ण के बारे में जो हम सुनेंगे उनसे तो वो तो भवौषध नहीं होगा, वो भव का भव अर्थात संसार का और भी कारण होगा। ऐसे व्यक्ति से कृष्ण कथा सुनने से हम संसार से मुक्त नहीं होते, हम और दृढ़ता से बाधित होते। और आधुनिक युग में भी बहुत प्रकार के लोग कृष्ण के बारे में कहते हैं, आज सब गुजराती अखबार में तो कृष्ण का तस्वीर लगाना है, नहीं गुजरात समाचार संदेश कृष्ण का फोटो 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 ऐसा लोग कहते हैं, कृष्ण का तस्वीर ऐसे रखते तो वो अच्छा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में वो तो नहीं होगा, लंदन टाइम्स में तो नहीं होगा, हिंदू न्यूज़पेपर में नहीं होगा लगते, हिंदू चेन्नई से प्रकाशित एक प्राचीन अखबार है हिंदू, जो पूरा भारत में हिंदू धर्म के एक नंबर शत्रु है वो अखबार, लेकिन उसका नाम है हिंदू, हिंदू न्यूज़पेपर, उसमें नहीं है, उसमें नहीं होगा। तो ऐसा है कि कृष्ण कथा परिवेशन करना और श्रवण करना तो आज तक ये पतित दुष्ट युग में आज तक भारत में ये प्रथा चलते रहते हैं, परंतु एक विघ्न है वो श्रवण कीर्तन का आदान प्रदान में एक विघ्न है। श्रील प्रभुपाद ये तात्पर्य में लिखते कि ऐसे बड़े बड़े पंडितगण पॉलिटिशियन दार्शनिक वैज्ञानिक जो भगवद गीता के ऊपर उनकी स्वयं की दूषित प्रथा से कहते हैं, और लोग जो ऐसे प्रकार लोग से कृष्ण कथा सुनते हैं उनका कल्याण नहीं होते। और ऐसे भी भगवत कथा भगवत सप्ताह वो ऐसे आज तक चलते हैं, राम कथा गुजरात में एक विशेष प्रसिद्ध मान्य राम कथा का है, लगते है उसका वायस बहुत हो गया नहीं, अभी अभी तक राम कथा कहते हैं। और साधु सब साधु जो है तो ऐसे अगर कोई साधु है भारत में तो आशा होते है कि कम से कम कभी कभी कृष्ण के बारे में कुछ ना कुछ कहते। मुझे मालूम नहीं वो जो योग व्यम शिक्षक है योग व्यम के गुरु कृष्ण के बारे में कुछ ना कुछ कहते कि नहीं, मुझे मालूम नहीं। अच्छा है यदि कृष्ण के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि जो यही विषय है यही श्लोक में और तात्पर्य में कि जो परंपरागत निवृत्त कृष्ण साधु नहीं है वो जो कृष्ण के बारे में कहते हैं उससे बवौषध नहीं होते। उस प्रकार साधु तथा कथित साधु सुनने से हम भव संसार से मुक्त नहीं होते, हम और दृढ़ता से बंधन में फंस जाते। तो विषय यही है कि कृष्णा के बारे में श्रवण करना चाहिए। इसी प्रकार वक्ता और श्रोता दोनों निवृत्त तृष्णा होने चाहिए। निवृत्त था शायर उपगीयम निवृत्त तृष्णा। इसके बारे में हम श्रील रूप गोस्वामी से सीखते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति में एक मुख्य शर्त है अन्याभिलाष शून्य, अन्याभिलाषिता शून्य होना चाहिए। अर्थात भक्ति करने से कुछ भौतिक अर्थ प्राप्त करने की कामना नहीं होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति से यदि हम कृष्ण कथा सुनेंगे हम लाभवान होंगे। और यदि हमारे हृदय में उसी प्रकार इच्छा है केवल कृष्ण भक्ति करना, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सपना, उसी प्रकार वक्ता से सुनने चाहिए जो केवल भक्ति सपना। केवल भक्ति, केवल भक्ति शब्द का अर्थ है उसी प्रकार भक्ति जिसमें कुछ भी कर्म का दूषण नहीं है, ज्ञान का दूषण नहीं है, योग का दूषण नहीं है, केवल भक्ति। भक्ति किस प्रकार भक्ति करने चाहिए और भक्ति किस लिए भक्ति करने, भक्ति के लिए। जैसे यशोदा माई से यदि हम पूछेंगे तो क्यों कृष्णा का लालन पालन करते, क्यों 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 वो क्यों, वो प्रश्न तो यशोदा माई का मन में नहीं आते। कृष्ण तो कृष्ण मेरे शिशु है और ऐसे माता शिशु, माता तो शिशु को दूध पिलाते है और ऐसे और सभी प्रकार के लालन पालन करते हैं। हवा क्यों चलते रहते हैं, उसका वैज्ञानिक रूप से हम गवेषणा से हम कुछ ना कुछ उसके बारे में बोल सकते हैं, लेकिन क्यों ऐसे चलते रहते, वो उसका स्वभाव है, हवा का स्वभाव है, तो आते जाते। तो जीव का स्वभाव है कृष्ण सेवा करना, जीव का धर्म, जीव ऐसा रूप है कृष्ण नित्य दास। तो ऐसा व्यक्ति जिनके मन में क्यों मैं करता हूँ कृष्ण सेवा कृष्ण भक्ति, वो प्रश्न तो नहीं आते। तो अपने आप से स्वभाव से भक्ति करते हैं वो व्यक्ति शुद्ध भक्त है। और ऐसे भक्त से कृष्ण कथा सुनने चाहिए। और सद श्रोता तो उसी प्रकार भावना से भावित होने चाहिए। सामान्यतः लोग जो कृष्ण के बारे में कहते हैं या सुनते हैं उनके मन में काम क्रोध लोभ मोह मदा मात्सार्य असंख्य भौतिक इच्छाएं हैं और भौतिक आसक्तियां हैं। तो ऐसे व्यक्ति अयोग्य है कृष्ण के बारे में कहना, कृष्ण कथा कहना अयोग्य है। इसी प्रकार क्योंकि जो शुद्ध भक्त नहीं है तो कृष्ण तत्व अच्छी तरह पूरी तरह तत्वतः समझ नहीं सकते, तो कैसे दूसरों को समझेंगे? जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। ये प्रसिद्ध गीता श्लोक का विशेष प्रसंग है, ये निवृत्तताशय भगवत श्लोक के साथ। तत्वतः जो तत्वतः समझते है कि कृष्ण का जन्म, आज हम कृष्ण का जन्मदिन के अवसर पर हम महोत्सव करते हैं, उद्यापन करते हैं, तो कृष्ण का जन्म साधारण नहीं है, कृष्ण का कर्म साधारण नहीं है, और भौतिक प्रकार के असाधारणता से अतीत भी है। कृष्ण का कर्म असाधारण है, तो ऐसे कुछ लोग जिनके कर्म असाधारण है, जैसे भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्म असाधारण है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, जो वे करते हैं साधारण व्यक्ति नहीं करते, नहीं कर सकते, तो उनका कर्म असाधारण है। परंतु कृष्ण का कर्म किस प्रकार असाधारण है, वो असाधारण से असाधारण होता, दिव्य है, इसका अर्थ है त्रिगुण के अतीत, सत्वगुण रजगुण तमगुण का कुछ भी प्रभाव नहीं है कृष्ण का कर्म है। सब कुछ जो भगवान कृष्ण करते हैं वो सब कुछ पूरा त्रिगुण अतीत दिव्य है। एतद् हम क्यों कृष्ण को ईश्वर बोलते हैं, परमेश्वर, तो बहुत कारण हो सकते, बहुत लक्षणों से हम समझ सकते कि कृष्ण भगवान परमेश्वर है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है जिसके बारे में ये श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में उसका वर्णन है, एतद् ईशनम ईशस्य, तो कैसे ईश्वर ईश्वर है, यही श्लोक में यही रहस्य का समाधान है। एतद् ईशनम ईशस्य प्रकृति स्तोपि तद्गुणाय न युज्यते सदात्मस्थाय। तो ईश्वर ईश्वर है इसी कारण से, क्योंकि भौतिक प्रकृति के बीच में उपस्थित होते हुए भी वो कभी भी वो प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित नहीं होते, लिप्त नहीं होते, युक्त नहीं होते। और यथा बुद्धिस्त आश्रय, और जो कृष्ण के आश्रित होते तो वे भी ऐसे ही होते, त्रिगुण के अतीत रहते, त्रिगुणों की पूरी स्थिति में, पूरा वातावरण में उपस्थित होते हुए भी जो कृष्णाश्रित है, वे कृष्ण जैसे कृष्ण की कृपा से त्रिगुण का प्रभाव से मुक्त होते, और पूरा जगत निवासियों होते क्यों, कारण क्या है, त्रिभिर्गुणमायार्भावाय एदमानमदपुमा ऐ भी सर्व में जंग, क्या श्लोक है, त्रिभिर् गुणमाया भावाय ऐ भी सर्व में जंग जगत मोहितं ना बीजानाति मामेव्य परमव्ययम्, वही श्लोक है। सब जो भौतिक संसार में है, भौतिक संसार में है इसी कारण से कृष्ण को नहीं जानते। कृष्ण भूली सही जीवन आदि बाहिमो कथैव माया थारे दया संसार दुख। कृष्ण भूल के हम भौतिक जगत में आया है और हम संसार दुख मिलते हैं। और प्रकृति के तीन गुण का बंधन में है और इसलिए हम नहीं जानते कृष्ण, जो भगवान कृष्ण जो त्रिगुण का प्रभाव से विमुक्त है, इसलिए उसके पश्चात श्लोक जो है दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरात्यया ममेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। सब प्रकृति के तीन गुण का सख्त बंधन में है भौतिक संसार में, परंतु जो कृष्णाश्रित होते कृष्ण की कृपा से वो प्रकृति के तीन गुण का प्रभाव से मुक्त होते हैं। तो हम जो बद्ध जीव है, हम जो पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, हम जो इसी स्थिति में है, हमें सर्वप्रथम कृष्ण कथा सुननी चाहिए जिससे हम भौतिक माया से मुक्त होंगे। कृष्ण कथा सुनने से सर्वोच्च प्राप्य फल क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्ति। परंतु जब तक हम भौतिक संसार में है और भौतिक चेतना से चलते रहते हैं तो तब तक हम प्रेम से बहुत दूर रहते। प्रेम और काम दोनों एक ही जैसे दिखते, परंतु दोनों के बीच में बहुत बहुत बड़े पाठक है। अतेंद्रिय प्रीति वंचा थारे बोले काम, कृष्णेन्द्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो यही पाठक क्या है, वो कामना कि मेरे स्वयं की इंद्रियों तृप्त हो जाएगा, वो इंद्रिय तृप्ति वो काम है जिससे भवबंधन होते, और कि कृष्णेन्द्रिय कृष्णार्थ खिल चेष्टा, सब कुछ मैं करता हूँ केवल कृष्ण का सुख के लिए, वो प्रेम है। तो हम भवबंधन में है तो हमें सुनने चाहिए कृष्ण के बारे में। प्रथम भगवद गीता की वाणी, पहले हमें समझना चाहिए कि कृष्ण प्रभु है, हम दास है, कृष्ण भुक्ता है, भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञातनामां शांति मृच्छति। कृष्ण भुक्ता है अर्थात सब कुछ जो हम करते हैं तो केवल कृष्ण का सुख के लिए करना चाहिए। तो उसे हमें सीखना चाहिए कृष्ण क्या चाहते, कृष्ण नहीं चाहते क्या, ये सब सीखना चाहिए। और कृष्ण सर्वलोक महेश्वरम, कृष्ण प्रभु है, सबके प्रभु है, और कृष्ण भगवान सबके परम बंधु है। तो ये तीनों विषय समझना चाहिए, ये तीन विषय जब तक हम ये तीन विषय तो पूरी तरह स्वीकार नहीं करते हैं तब तक यदि हम प्रेम लीला के बारे में सुनने चाहते हैं तो वो प्रेम लीला श्रवण करने में अन्य अभिलाष आएगा और काम क्रोध लोभ इत्यादि से प्रभावित होने का कारण से हम वो प्रेम लीला का गुह्य तात्पर्य उसमें हम प्रवेश करने की योग्यता नहीं मिलेंगे। तो पहले हमें भगवद गीता कथा सुनने चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा जो परिवेशन करते हैं जिन और जिनके हृदय में काम क्रोध इत्यादि रहते हैं और जो नहीं जानते वो सब निकालने का उपाय है और जो किसी भी प्रयास नहीं करते वो सब निकालना। जो कृष्ण कथा परिवेशन करते परंतु स्वयं सुखदेव गोस्वामी निवृत्त तृष्णा साधु के आश्रित नहीं है तो उसी प्रकार वक्ता से श्रीमद् भागवत कथा सुनने से तो यही प्रक्रिया भविष्यत भौतिक संसार से मुक्त होना तो वो तो नहीं होगा। लोग जो वास्तव में कृष्ण सेवा कृष्ण भक्ति करने की इच्छा नहीं करते हैं तो उसी प्रकार लोग आकृष्ट होते हैं। पेशधारी अर्थात पैसा लेने वाले वक्ता सुनने से जिस प्रकार कृष्ण कथा सामान्य भगवत कथा में होती है और जिस प्रकार आज अभी हो रहे हैं और जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद हमको परिवेशन किया उसमें बहुत बड़ा अंतर है। नहीं भगवत कथा में उसी प्रकार वचन होते हैं कि हमें सभी प्रकार की भौतिक आसक्तियों से मुक्त होने चाहिए। ऐसा कोई कहते हैं कभी कभी ऐसा कहते हैं काम क्रोध लोभ से वो लेकिन सामान्य रूप से ऐसा कहते वो कैसे हम काम क्रोध लोभ इत्यादि से मुक्त हो सकते तो ऐसे नहीं कहते। और बीच बीच तो ये सब वक्त तो बीच भी उनकी कथा के बीच ऐसे भी कहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद मिलेंगे जिससे आपका कोई क्लेश नहीं होगा और बच्चे का आशीर्वाद होगा जिससे वो एग्जाम तो पास हो जाएगा। ये सब तो श्रीमद् भागवत में हम क्या मिलते हैं कि श्रीमद् भागवत सुनने से हमारे बच्चे तो स्कूल में नंबर वन होंगे ऐसे तो कुछ नहीं है। और इंडिया तो वर्ल्ड कप क्रिकेट में विजयी होंगे तो ऐसे तो कुछ नहीं है। सामान्य भौतिक चिंतन का स्रोत और सब कुछ जो हम यही स्रोत परंपरा में मिलते हैं उसमें दिन रात स्वाग पाताल अंतर है। अवैष्णव का मुख से कृष्ण कथा सुनने से बाबा बंधन और तीव्र हो जाते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद यही तात्पर्य में एक श्लोक उदाहरण करते हैं। अवैष्णव मुखोद्गीर्णम भूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्टम यथा पाया। हरि कथा जो अवैष्णव है अवैष्णव मतलब जो पूरी तरह ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारणम जो यही वचन तो पूरी तरह हृदय में ग्रहण नहीं किया तो उसी प्रकार व्यक्ति से यदि हम कृष्ण कथा सुनेंगे हम अमृत अर्थात संसार से मुक्ति नहीं मिलेंगे। उससे क्या होते है जैसे दूध कुछ दूध यदि एक विषक्त सांप वो दूध से कुछ पीते हैं तो बाकी दूध तो सब विष हो जाएगा और वो दूध पीने से हम बीमार हो जाएगा। तो इसी प्रकार कृष्ण कथा शुद्ध भक्तों से सुनना चाहिए। शुद्ध भक्तों तीव्रता से कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण परमेश्वर है कृष्ण एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य परमेश्वर है कृष्ण ये विषय का अर्थ है कि हम सब भृत्य हम सब सेवक है नित्यो नित्यानम चैतनश्चैतनानम एको बहुनम यो विदधाति कामान जो भगवान है वो सदैव भगवान ऐसा नहीं है जैसे एक प्रचलित भूल धारणा है कि भक्ति करने से हम भगवान बन जाएंगे हम स्वयं भगवान होंगे तो वो क्या भक्ति है हे भक्ति जैसे एक व्यक्ति बहुत नम्रता से एक छोटा व्यक्ति बहुत नम्रता से एक बड़ा अमीर की सेवा करते बहुत नम्रता से बहुत स्नेह से लेकिन उसका मन में कि धीरे धीरे वो अमीर मुझको विश्वास करेंगे फिर उसको हत्या करके मैं उसका सब धन लेके मैं खुद को अमीर बनाऊंगा तो वैसे है भक्ति करता हूँ और भक्ति करने से यही इच्छा है कि स्वयं भगवान बन जाऊंगा तो अभक्तों से भक्ति के बारे में नहीं सुनना चाहिए। एक साधु जो गुजरात में बहुत जनप्रिय था लगते है अभी तक गुजरात में है नहीं अहमदाबाद जेल में है कहाँ है अहमदाबाद जेल में है एक साधु तो सुना था खुद नहीं सुना लेकिन जसुमती नंदन प्रभु मुझको बताया कि वो साधु एक बार प्रवचन में बोला ठुकराम के बारे में ठुकराम के बारे में सुना अच्छा है नहीं ठुकराम हम विठाल के बारे में सुना अच्छा है नहीं हम साधु से विठाल और ठुकराम के बारे में सुनेंगे अच्छा होगा नहीं भक्ति कथा होगी लेकिन क्या बोला वो जो अभी जेल में है जेल को और ज्यादा अपवित्र करते वो बोला था कि वो प्रतिदिन ठुकराम विठाल का मंदिर गया और वहाँ कुछ कीर्तन अभंग कीर्तन किए थे और एक बार विठाल ठुकराम को बोले नहीं और यहाँ आने का जरूरत नहीं है अभी आज से तुम्हारी भक्ति तो परिपूर्ण हो गई तुम और मैं एक हो गया और यहाँ आने का जरूरत नहीं है ये क्या बात है भक्ति है ये भक्ति है मंदिर आने का और जरूरत नहीं है क्योंकि तुम और मेरी की एक ही स्थिति है ये क्या है अभी भक्ति करने का और जरूरत नहीं है ये भक्ति का नाम है भक्ति का नाशन होता है इसलिए हम कृष्ण के बारे में शुद्ध भक्तों से सुनना चाहिए। श्रील प्रभुपाद हमें भगवद गीता यथारूप प्रदान किया। श्रीमद् भागवत क्या खजाना है, श्रीमद् भागवत प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थक है। हर एक श्लोक में हर एक अक्षर में अलग अलग अर्थ है और सब अर्थ है कृष्ण स्थू भगवान स्वयं। कैसे कृष्ण स्वयं भगवान है तो व्यासदेव 18,000 श्लोक में वर्णन किया और सब आचार्यों ये सब श्लोक के ऊपर भाषा टीका प्रदान किया। वो सर्ववेद इतिहासानं सारं सारं ही उदाहृतम्। श्रीमद् भागवत जो वेद शास्त्र का सार का सार है। वेद शास्त्र का सारांश क्या है, वेदांत सूत्रों, और वेदांत सूत्रों का सारांश क्या है, श्रीमद् भागवत। तो वो श्रीमद् भागवत जो वेद कल्पतरु का परिपक्व फल है, जिसके ऊपर श्रीधर स्वामी, मध्वाचार्य, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वीर राघवाचार्य, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वल्लभाचार्य, बहुत महान महान भक्त इनके शुद्ध हृदय से वो भगवान से शुद्ध सरस्वती से प्रेरणा जो मिले वो साक्षात्कार जो मिला वो सब भाषा ठीकांग का सारांश श्रील प्रभुपाद सरल अंग्रेजी भाषा में संग्रह किया और प्रकट किया इनके श्रीमद् भागवत तात्पर्य में। और आज वो सब उपलब्ध है हिंदी, गुजराती और बहुत बहुत विश्व के बहुत बहुत भाषाओं में। तो हम सब बहुत ही सौभाग्यवान हैं कि हम आज जन्माष्टमी दिन पर वास्तविक भगवान कृष्ण के बारे में कथा सुन सकते। और हम बहुत ही सौभाग्यवान हैं कि हम केवल जन्माष्टमी दिन पर कृष्ण कथा नहीं सुनते, हम प्रतिदिन सुनते। श्रील प्रभुपाद की प्रेरणा से तो विशेषकर ये भद्रा मास में हमें प्रयास करना चाहिए श्रीमद् भागवत का पुरस्कार वितरण करना। बहुत पहले से इस्कॉन का इतिहास में पूरा दिसंबर मास में भक्तों विशेष प्रयास करते श्रीमद् भागवत गीता का वितरण करना और श्रील प्रभुपाद की सभी पुस्तक है ग्रंथों। तो अभी एक और भी विशेष सुप्रयास है भद्रा मास में श्रीमद् भागवत का पूरा सेट वितरण करना। श्रीमद् भागवत का द्वादश स्कंध में एक श्लोक है कि जो व्यक्ति एक भद्रा पूर्णिमा पर ये श्रीमद् भागवत सोना सिंहासन पर रख के एक शुद्ध ब्राह्मण को दान देते वो दान करने से तो मुक्ति मिलती है। तो इसलिए हम उससे कुछ प्रेरणा मिलने से हम पूरा भद्रा मास में विशेष प्रयास करते श्रीमद् भागवत का पूरा सेट वितरण करना। ऐसा लगता है कि आप जो अभी उपस्थित है सबके घर में ये पूरा भागवत तो नहीं है, लगते लगते बहुत है। हम जो उपस्थित है अभी तो बहुत है जिनके घर में श्रीमद् भागवत है, और कुछ है जो जिनके घर में नहीं है। हाँ, आपके घर में यदि श्रीमद् भागवत का पूरा सेट है, आपका सुबूझ उठाए अभी यदि हो, उठाना। जिनके घर में नहीं है हाँ तो आज ले ले, ये हमारा अनुरोध है, आदेश है, नम्रता से हम अनुरोध करते हैं और तीव्रता से हम आदेश देते जैसे तैसे हो। आज तो पूरा जमा देने का जरूरत नहीं है, कुछ भी पैसा देना नहीं है, बाद में भी दे सकते, मुफत मुफत बाद में पैसा दे दो। पैसा तो कोई बात नहीं है, ये क्या दाम है, 5,000 ऐसे तो पहले खास गुजरात में दिवाली का मौसम में तो हर एक परिवार तो कम से कम 5,000 रुपया फटका में फटकते थे, नहीं कम से कम। तो आज वो थोड़ा कम हो गया, नहीं नया नियम है, कम हो गया मालूम नहीं, मैं दूर जाता हूँ उसी समय फटाका फटकने से। तो श्रीमद् भागवत तो सबसे बड़ा धन है, ये ग्रंथ के रूप में भगवान श्री कृष्ण, कृष्णा स्वयं उपस्थित होते और इनके शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद इनका वचन से उनका व्याख्या से हमको कृष्ण भगवान देते हैं। कृष्ण भगवान सर्वत्र व्याप्त रहते हैं, नहीं भगवान कहाँ है, आपका हृदय में, हर एक परमाणु में भगवान सर्वव्यापी है, परंतु हम कैसे भगवान मिलेंगे। जैसे विद्युत सर्वव्यापी है नहीं, तो कैसे हम विद्युत से फायदा मिल सकते, तो एक इलेक्ट्रिशियन जानते हैं तो कैसे वो विद्युत तो तार में से लाना है और प्लग लगाना है। एक एक्सपर्ट होना चाहिए जिससे हम फायदा मिल सकते विद्युत से। तो उसी प्रकार भगवान सर्वव्यापी है, परंतु हम एक एक्सपर्ट से फायदा मिलना चाहते जिससे हम भगवान को मिल सकते, और वो एक्सपर्ट है श्रील प्रभुपाद। और सब जो श्रील प्रभुपाद के पदों का अनुसरण करते, श्रील प्रभुपाद जिनकी जन्मतिथि कल कल है, भगवान कृष्ण आए और एक दिन के बाद इनके शुद्ध भक्त आए हैं हमको कृष्ण देने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि आई हैव पुट द बेस्ट ऑफ माई सेल्फ इन माई बुक्स, जो मेरा श्रेष्ठ भाग है प्रभुपाद बोले मेरे ग्रंथों में रख दिया था, और ये श्रीमद् भागवत श्रील प्रभुपाद का सर्वोच्च प्रदान है। हर एक श्लोक में, हर एक अक्षर में और अक्षरों के बीच में भी कृष्ण है, कृष्ण 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 और कृष्ण। श्रील प्रभुपाद हमको कृष्ण देने के लिए कृष्ण का आदेश के अनुसार ये भौतिक संसार में आए हैं, और विशेषकर ये श्रीमद् भागवत का संस्करण में से हमको कृष्ण देते हैं। तो आप सब लाभ लीजिए, आपका जीवन धन्य बनाए श्रीमद् भागवत का पूरा सेट लेने से। और यदि आपका घर में है तो अब धन्य ही है, धन्य से धन्य बनाए ये श्रीमद् भागवत का प्रतिदिन पाठ करने से। उसके बारे में ये श्लोक है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवत उत्तम श्लोक है, भक्ति भवती नैष्टिकी, शुद्ध भक्ति मिल सकते भगवत की सेवा करने से। भगवत का मतलब भगवान और भगवत का मतलब शुद्ध भक्त, तो दोनों की सेवा होती है श्रीमद् भागवत पाठ करने से, क्योंकि श्रीमद् भागवत कृष्ण ही है और यही श्रीमद् भागवत संस्करण श्रील प्रभुपाद से अभिन्न है, दोनों एक साथ हम मिलते हैं। तो जन्माष्टमी सबसे मंगल दिन है और सबसे मंगल प्रयास है जन्माष्टमी दिन पर श्रीमद् भागवत ग्रहण करना और दूसरों को श्रीमद् भागवत देना। तो कौन आज श्रीमद् भागवत पुरस्कार लेंगे? दोबारा हाथ जो पहले हाथ उठाए दोबारा उठाना है अभी। कौन लेंगे आज श्रीमद् भागवत कैसेट? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
जन्माष्टमी के दिन महाराज देश है तो सबको श्रीमद् भागवतम सेट बुक मिलेगा आज जिसको चाहिए। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है महाराज के हस्त कमल से श्रीमद् भागवतम सेट प्राप्त करना।
यदि आपको चाहिए लीजिए और यदि आप नहीं चाहते तो फिर भी लीजिए। यदि आप नहीं चाहते तो आप राक्षस हो, तो राक्षस से संत बनाना चाहिए श्रीमद् भागवत। यहाँ पर कोई राक्षस नहीं है, खाली एक है ये पूरा कमरा में जो व्यास संत पर बैठ रहा है श्रील प्रभुपाद की कृपा से। वो राक्षस तो अभी ये भगवान की चमत्कार है जो राक्षस को भगवत भक्ता बनाते हैं। तो आप सब पुण्यशाली है, तो ये परम पुण्य है श्रीमद् भागवत। हरे कृष्ण।